नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मट्ठजनियवेयण वहि समुत्तीर्णये जिणेणमिं वेयणमहाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। यह श्री वीर सेनाचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें अभी हम वेदना क्षेत्र विधान हो चुका अपना, वेदना काल विधान शुरू हो गया है। हम पृष्ठ संख्या 79 पर आ गए, 79 पहले सूत्र का अर्थ हमने देखा था। अब ये पदम मीमांसा अधिकार चल रहा है, उसमें हमने जो 13 प्रश्न देखे थे वो ज्ञानावरण पर घटा दिए थे। अब द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते हैं। द्वितीय सूत्र में पहले में तो ये उत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट है, जगन्य अजगन्य सब बता दिए। अब कहते जो उत्कृष्ट है, क्या वो अनुत्कृष्ट जगन्य वगैरह हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो ये प्रश्न भी चलेंगे। देखो द्वितीय सूत्र का अर्थ इस प्रकार है, उसी में से उन्होंने ये सारे सूत्र तैयार किए हैं कि उत्कृष्ट ज्ञाना वरणीय करना, यरणीय हुआ, ज्ञाना वरणीय, अच्छा है, उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना जघन्य और हुआ है, अनुत्कृष्ट नहीं होती। क्यों? जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट नहीं हो सकती, जो उत्कृष्ट है वो जघन्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये उससे विरुद्ध है। कथंचित वह अजघन्य है, जघन्य नहीं इसलिए अजघन्य कह सकते उसको। जघन्य से ऊपर के समस्त काल विकल्पों में अवस्थित अवस्थित ने रहने वाला अजघन्य पद में उत्कृष्ट पद भी संभव है। उत्कृष्ट भी जघन्य नहीं उस अपेक्षा से अजघन्य कह सकते हैं। कथंचित वह सादी है, क्योंकि अनुत्कृष्ट काल से उत्कृष्ट काल उत्पन्न होता है, यानी पहले अनुत्कृष्ट था फिर उत्कृष्ट हुआ, तो वो सादी है। ध्रुवपद नहीं है, यानी उत्कृष्ट जो है वो ध्रुव यानी कायम उतना का उतना ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का सब काल में अवस्थान नहीं रहता। द्रव्यार्थिक ने का अवलंबन करने पर भी ध्रुवपद संभव नहीं है, क्योंकि चारों ही गतियों में उत्कृष्ट पद कदाचित ही संभव होता है। ये तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो उत्कृष्ट पद है वो कभी वो संभव होगा, कदाचित ही संभव होता है। अब कहते कथनचित वह अध्रुव है, क्योंकि उत्कृष्ट पद का सब काल में अवस्थान नहीं रहता, वो कम ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको अध्रुव कहा। कथनचित वह कृतयुग्म है, क्योंकि उत्कृष्ट काल में बादर युग्म, कलियोज और तेजोज संख्या विशेषों का अभाव है। बिल्कुल जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो उत्कृष्ट स्थिति है वो कृतयुग्म राशि है, समयों को गिनना है ना उसमें। हाँ। अभी एक क्षेत्र को भूल जाओ, अभी हम यहाँ काल की बात कर रहे हैं। कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है, उसको ओम नहीं कहेंगे, क्योंकि ओम जो है वो हानि को बताता है। उत्कृष्ट में हानि या वृद्धि नहीं होगी तभी उसको हम उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, परंतु वो नोम नो विशिष्ट है क्योंकि वृद्धि व हानि के होने पर उत्कृष्टपने का विरोध है, यानी वो ओम और विशिष्ट नहीं है, नोम और नो विशिष्ट है। ख्याल है ना क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार पांच हुए ना ये उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, पांच पद रूप है। अब अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, ये तीसरे सूत्र का अर्थ कहेंगे, इसमें से तीसरा सूत्र लगाएंगे। अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, अभी जो अनुत्कृष्ट है वो क्या क्या हो सकते क्या नहीं, जो अनुत्कृष्ट है उत्कृष्ट नहीं हो सकेगी, जो अनुत्कृष्ट है वो क्या हो सकती है, कथनचित जघन्य, किसकी अपेक्षा, उत्कृष्ट की अपेक्षा, अपेक्षा से वो कथन हो सकता है, क्योंकि उत्कृष्ट को छोड़कर अधस्तन समस्त विकल्पों रूप अनुत्कृष्ट पद में जघन्य पद भी संभव है, इसलिए कथनचित जघन्य बता दिया। कथनचित व अजघन्य है क्योंकि अनुत्कृष्ट पद अजघन्य पद का अविनाभावी है। कथनचित वह सादी है क्योंकि उत्कृष्ट पद से अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न होता है, तथा अनुत्कृष्ट से भी अनुत्कृष्ट विशेष की उत्पत्ति देखी जाती। विशेष यानी अनुत्कृष्ट विशेष का अर्थ पर्टिकुलर अनुत्कृष्ट, जैसे अनुत्कृष्ट हम देखते हैं कि एक जघन्य कहेंगे और सौ उत्कृष्ट कहेंगे, तो 99 भी अनुत्कृष्ट है, 98 भी अनुत्कृष्ट है, 96, 95, 90 भी अनुत्कृष्ट कहेंगे, हाँ नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे वालों को हम अजघन्य कह रहे हैं ना, हमने चार भेद किए हैं, जघन्य की ओर वाले अजघन्य भी कहे हैं, उसको कह सकते किसी अपेक्षा से, परंतु वो बात नहीं है। कथनचित वह अनादि है क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर अनुत्कृष्ट पद का बंध नहीं होता, बंध नहीं होता, ऊपर क्या लिखा है, बंध अभाव दो, अनादि से क्या है, कोई ना कोई बंध तो हो ही रहा है, कोई ना कोई काल है ही, इसलिए द्रव्यार्थिक नहीं लगाया। कथनचित वह ध्रुव है क्योंकि द्रव्यार्थिक नहीं का अवलंबन करने पर अनुत्कृष्ट पद का विनाश नहीं होता। कथनचित वह अध्रुव है क्योंकि पर्यायिक नहीं का अवलंबन करने पर अनुत्कृष्ट पद ध्रुव नहीं है। कथनचित वह ओज है, अह हुआ है, कथनचित ओज है क्योंकि, यानी विषम राशि है, क्योंकि किसी अनुत्कृष्ट पद विशेष में दोनों प्रकार की विषम संख्याएं देखी जाती है। दोनों कौन सी है, कलियोज और ओजोज, तेजोज, कलियोज और तेजोज, यानी एक बाकी रहे और तीन बाकी रहे। कथनचित युग्म है क्योंकि किसी अनुत्कृष्ट पद विशेष में दोनों प्रकार की सम संख्याएं देखी जाती है, यानी उसमें कृतयुग्म और बादर युग्म। कथनचित वह ओम है क्योंकि कहीं पर हानि से उत्पन्न हुआ अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है, यानी अधिक से वो कम होकर विशिष्ट अनुत्कृष्ट हुआ तो हानि से हुआ। कथनचित वह विशिष्ट है, ये वृद्धि से कहेंगे, क्योंकि कहीं पर वृद्धि से अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न होता है। कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है क्योंकि अनुत्कृष्ट भूत जघन्य पद की अथवा अन्य अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्षा करने पर वृद्धि और हानि का अभाव रहता है। इस प्रकार ज्ञानावरण की अनुत्कृष्ट वेदना 11 पद स्वरूप है। इस प्रकार तीसरे सूत्र की प्ररूपणा की गई है। इसमें उत्कृष्ट को नहीं लिया है और सादी को नहीं लिया है। अब चतुर्थ सूत्र की प्ररूपणा देखते हैं। तो चतुर्थ सूत्र की जघन्य ज्ञानावरणी वेदना पर घटाएंगे। जघन्य ज्ञानावरणी वेदना कथनचित अनुत्कृष्ट है, यानी जो जघन्य वो उत्कृष्ट नहीं, उस अपेक्षा से अनुत्कृष्ट कह सकते हैं उसको। देखो अनादि में क्या लिखा था उन्होंने, पांचवी लाइन में कथनचित अनादि क्यों कहा, अनादि किस अपेक्षा से कहा था? कि द्रव्यार्थिक ने का अवलंबन करने पर अनुत्कृष्ट पद का बंध नहीं होता, यानी वो बंद होता है ऐसा कहीं नहीं। अनुत्कृष्ट पद वहां उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ऐसे पद नहीं लगते द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से, तो वहां अनादि कह सकते उसको, परंतु सादी नहीं कहेंगे उसको। ऊपर क्या है, कथनचित अनादि लिखा है ना, अनादिया। देखो हम यहाँ पढ़ रहे थे 81 पृष्ठ पर, ये कथनचित अनुत्कृष्ट देखा हमने, क्योंकि अनुत्कृष्ट जघन्य की ओग जघन्य से एकता देखी जाती है। कथनचित वह सादी है, अब यहाँ पर सादी लिया, एक कथनचित का बिंदी बराबर करना, कथचित हुआ है, कथनचित दो बार। देखो कथनचित सादी क्यों कहा, क्योंकि अजघन्य से जघन्य पद उत्पन्न होता है। कथनचित अनादि यह पद नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय संबंधी बंध और क्षीण कषाय के अंतिम समय संबंधी सत्व में द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर भी अनादिपना नहीं पाया जाता। जघन्य है ना, जघन्य ज्ञानावरणी में अनादिपना नहीं है। आप कहेंगे उपशम श्रेणी मानने वाले को क्या होगा, 11वें में से नीचे आने वाले, मगर वो सत्ता में पड़ा है ना, उसका भी सत्य सत्ता में तो कुछ नहीं था और फिर हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। बंद की अपेक्षा बंद होता है, परंतु यहाँ तो सत्व भी पड़ा है वहां पर, इसलिए उसको अनादि वहां घटित नहीं होता, सादी तो घटित हुआ। कथनचित वह अध्रुव है, पहले कौन सा लिया, अनुत्कृष्ट है, सादी है, अब कहते अध्रुव है। कथनचित वह कलिओज है, जघन्य की बात चल रही ना, क्योंकि क्षीण कषाय के अंतिम समय संबंधी स्थिति का ग्रहण किया गया है। क्षीण कषाय के अंतिम समय में वो खिरने वाला है, तो एक निशे खिरेगा ना, अभी काल की बात है, अभी अधिक समय वाली बात नहीं, अभी तो एक समय जो कुछ निशेक है वो एक समय में ही खिरने वाला है, तो वो तो उसको कितना कहेंगे, कलियोज। कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है, एक थ के ऊपर बिंदी लगाना, हाँ अंतिम समय के, क्योंकि एक समय बाकी है ना, इसलिए क्षीण कषाय भी लिया वहां पर। अंतिम समय में जो लास्ट उसका द्रव्य कितना है उसकी बात नहीं है, काल के एक निषेक है ना, उसका अंतिम निषेक है, एक साथ तो एक एक निषेक खिरता है हमेशा। तो कथनचित नोम नो विशिष्ट है, ये जो जघन्य की बात है। इस प्रकार जघन्य काल वेदना पांच प्रकार अथवा अपने साथ छह प्रकार भी, उसका अपना नाम ले लो तो छह, परंतु पांच प्रकार होते हैं। इस प्रकार चतुर्थ सूत्र की प्ररूपणा की गई है। अब पांचवा सूत्र बताएंगे। अब पांचवें सूत्र की प्ररूपना करते हैं, वह इस प्रकार है। अजघन्य ज्ञानावरणीय वेदना कथनचित उत्कृष्ट है। अजघन्य की बात चल रही है। जघन्य की अपेक्षा उसको उत्कृष्ट कह सकते हैं, इसलिए कथनचित लिया, क्योंकि अजघन्य उत्कृष्ट ओव अजघन्य उत्कृष्ट जो है, अजघन्य को जो उत्कृष्ट कहा है वो ओव उत्कृष्ट से पृथक नहीं पाया जाता है। कथनचित वह अनुत्कृष्ट है, क्योंकि वह उसका अविनाभावी है। कथनचित वह सादी है, क्योंकि दूसरे पदों के पलटने के बिना अजघन्य पद विशेष रहते नहीं है, यानी अन्य पदों को पलटकर ये अजघन्य में आता है, इसलिए उसको सादी कहा। कथनचित अनादि है, अब इसको अनादि भी और सादी भी घटित किया, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर इस पद का बंध नहीं होता। कथनचित वह ध्रुव है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर अजघन्य पद का विनाश नहीं होता। अब कहते कथनचित अध्रुव है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर उसके ध्रुवपना नहीं पाया जाता, क्योंकि वो जो कुछ उसका काल कम अधिक बढ़ता है, कभी घटता है। कथनचित ओज है, कथनचित युग्म है, कथचित हुआ। कथनचित युग्म है, कथनचित ओम चाहिए, ओग हुआ है ना, कथनचित ओम है हो ना, ओग नाम का कोई पद नहीं है, तो कथनचित युग्म है, कथनचित ओम है, कथनचित वह विशिष्ट है, यह सब सुगम है। कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि पद विशेष की विवक्षा है। इस प्रकार अजघन्य वेदना के 11 भंग होते हैं, यह पांचवे सूत्र का अर्थ है। अब छठा सूत्र बनाएंगे, सादी ज्ञानावरणी वेदना। कथनचित उत्कृष्ट, हाँ हाँ ऊपर क्या, ओज बराबर है, ओज और युग्म यानी विषम और सम, वो हमने ओग के, हाँ ओग किया था उन्होंने। देखो सादी ज्ञानावरणी वेदना कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित उत्थ के ऊपर बिंदी के बदले ची के ऊपर हो गया, कथनचित। सादी काल की, काल उसका सादी, जघन्य ज्ञानावरणी वेदना सदैव है, परंतु उसका उस विशिष्ट पद सादी है। पदों की बात चल रही ना, जघन्य यह पद या उत्कृष्ट यह पद या अनुत्कृष्ट पद, ये जो कुछ बातें हैं, तो सादी किस किस में घटेगा अभी वो घटाते हैं। तो कहते कथनचित उत्कृष्ट है सादी में, हो कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है और कथनचित अजघन्य है। ये तो उस पर्याय की बात करेंगे, तो और कथनचित अध्रुव है, सादी वाली है वो अध्रुव है, वह ध्रुव नहीं है, क्योंकि सादी पद का अनादि और ध्रुव पद के साथ विरोध आता है, जिसको सादी का वो अनादि नहीं हो सकता है ना। और जो सादी है वो ध्रुव हो नहीं सकता। ध्रुव तो जो कायम जो है उसको ध्रुव कहेंगे। वह कथनचित ओज है। कथनचित युग्म है, कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है और कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार सादी वेदना के 10 भंग होते हैं। यह छठे सूत्र का अर्थ है। अब अनादि ज्ञानावरणी वेदना। तो अनादि ज्ञानावरणी वेदना कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य और कथनचित सादी है। अब सादी है वो अनादि नहीं हो सकते, पर अनादि को सादी कहा। अब कहेंगे वो कैसे हो सकता है। शंका, अनादि वेदना सादी कैसे हो सकती है। समाधान, क्योंकि वेदना सामान्य की अपेक्षा उसके अनादि होने पर भी उत्कृष्ट आदि पदों की अपेक्षा उसके सादी होने में कोई विरोध नहीं है। कथनचित वह ध्रुव है क्योंकि वेदना सामान्य का कभी विनाश नहीं होता। कथनचित अध्रुव है, अभी पर्यायार्थी नहीं की अपेक्षा कहीं, क्योंकि पद विशेष का विनाश देखा जाता है। शंका, सामान्य विवक्षा से अनादिता के स्वीकार करने पर उसमें पद विशेष की संभावना कैसे हो सकती है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अपने भीतर समस्त विशेषों को रखने वाले सामान्य की विवक्षा करने पर सामान्य किसको कहते हैं, अपने भीतर समस्त विशेषों को रखने वाले सामान्य की विवक्षा करने पर उसमें कोई विरोध नहीं है। यानी सामान्य और विशेष कोई अलग अलग जगह नहीं रहते हैं। हम देखते हैं सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति है। जहां सामान्य है वहीं पर विशेष है और जहां विशेष है वहां सामान्य है ही है। तो अकेला एक ही सामान्य अपेक्षा लगेगी विशेष लगेगी ये बात नहीं है, कोई विरोध नहीं है। वह कथनचित ओज, कथनचित युग्म, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट और कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार अनादि पद के 12 भंग होते हैं। यानी इस पर सभी लगे ना कि कुछ रह गया, कौन सा रह गया, उसको पकड़ेंगे तो 13 हो जाते हैं ना। यानी सभी लगे, यह 7वें सूत्र का अर्थ है। अब 8वां सूत्र कहेंगे ध्रुव ज्ञानावरणी वेदना। अब जो ध्रुव है वो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी, कथनचित अनादि। जो ध्रुव है उसको कथनचित अध्रुव भी कह दिया, कथनचित ओज, कथनचित युग्म, कथनचित हुआ है। यानी कहीं जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक अलग अलग अपेक्षा लगाने से वो ध्रुव भी अध्रुव वगैरह हो जाता है। अभी हमने युग्म तक पढ़ा था, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट और कथनचित नोम नो विशिष्ट, इस पर भी सभी लगे। इस प्रकार ध्रुव पद के 12 भंग होते हैं। अनादि पर भी 12 लगे और ध्रुव पर भी 12 लगे। यह 8वें सूत्र का अर्थ है। अब 9वां सूत्र कहेंगे अध्रुव ज्ञानावरणी वेदना। कथनचित उत्कृष्ट, कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित जघन्य, कथंचित अजघन्य, कथंचित सादी। अब अनादि नहीं लिया, जो अध्रुव है उसको अनादि नहीं कहा। कथंचित ओज, कथंचित युग्म, कथंचित ओम, कथंचित विशिष्ट, कथंचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार अध्रुव पद के 10 भंग होते हैं, यह 9वें सूत्र का अर्थ है। अब 10वां सूत्र बताएंगे। ओज ज्ञानावरणीय वेदना। अब जो उत्कृष्ट है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वो कृतयुग में राशि देखी थी हमने, तो ये ओज नहीं हो सकती। ओज ओज ज्ञानावरणी है, वो उत्कृष्ट नहीं हो सकती। ऐसा उल्टा ले सकते ना, उत्कृष्ट नहीं है बता रहे, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का अवस्थान कृतयुग में है, ये उन्होंने पहले बताया था। वह कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित जघन्य, यानी जघन्य कितनी हो सकती है, एक, हाँ एक कथंचित हुआ है, कथंचित अजघन्य, कथंचित सादी। सामान्य की विवक्षा से वह कथंचित अनादि है, कथंचित ध्रुव है, कथंचित अध्रुव है। ये ध्रुव भी सामान्य की अपेक्षा करेंगे, हाँ यहाँ लिखा ना, क्योंकि विशेष की विवक्षा है। वह कथंचित ओम, कथंचित विशिष्ट, कथंचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार ओज पद के 10 भंग होते हैं, यह 10वें सूत्र का अर्थ है। अब युग्म, युग्म ज्ञानावरणी वेदना। ये उत्कृष्ट हो सकेगी कि नहीं सकेगी, उत्कृष्ट हो सकेगी, जघन्य हो सकेगी कि, जघन्य एक समय है ना, जघन्य हमने हम उसमें ओज लिया एक समय, जघन्य ने एक समय, युग्म राशि में तो वो नहीं आएगी। तो देखो क्या क्या लिया अभी, युग्म ज्ञानावरणी वेदना, कथंचित उत्कृष्ट, यहाँ भी वो थ के ऊपर बिंदी नहीं दिख रही है, कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित अजघन्य, अजघन्य लिया, जघन्य को छोड़ दिया, जघन्य वाला एक समय वाला होगा, उसको हमने ओज राशि में दिया था। कथंचित सादी, कथंचित अनादि, यानी युग्म वाली सादी भी हो सकती है, अनादि से अनादि भी हो सकेगी। कथंचित ध्रुव, 84 पृष्ठ, कथंचित अध्रुव, अभी हम तीसरी लाइन में लास्ट तक आ गए। कथंचित ओम, कथंचित विशिष्ट और कथंचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार युग्म पद, युग्म यानी समराशि पद के 10 भंग होते हैं, यह 11वें सूत्र का अर्थ है। अब ओम ज्ञानावरणी वेदना। ओम यानी हानि, हमने देखी थी ना, हानि होकर जो होती है या हानि से जो होती है उसको हमने ओम देखा था। कितने सूत्र हो गए अपने अभी, 10, 11 हो गए, हाँ ये 12वें नंबर का सूत्र। ओम जो ज्ञानावरणी वेदना है यानी हानि से हुई है तो उत्कृष्ट नहीं हो सकती, उत्कृष्ट है वो किसी हानि से नहीं होती है, वृद्धि से हो सकेगी। तो ये कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित अजघन्य, ओम में जघन्य भी नहीं लिया, यानी जघन्य और हानि को नहीं होगी, इस तरह से लिया होगा शायद उन्होंने, जघन्य की और हानि नहीं होती ऐसा भी लिया होगा। देखो ओम में क्या लिखा था हमने, काल विशेष में हानि देखी जाती है। देखो 79 पृष्ठ पर, हानि से प्राप्त हो ऐसा नहीं है, उसमें हानि होती है कि नहीं ऐसा लिया। किसी काल विशेष में हानि देखी, उसमें हानि देखी जाती है ऐसा, यानी यहां उत्कृष्ट भी नहीं लिया और जघन्य भी नहीं लिया दोनों ओर से। कथनचित सादी, अभी हम पृष्ठ संख्या 84 पर आते हैं। फिर ओम ज्ञानावरणी वेदना की बात चल रही है। कथनचित अनादि, कथनचित ध्रुव, कथनचित अध्रुव, यह द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न की अपेक्षा। कथनचित ओज, कथनचित युग्म है। इस प्रकार ओम पद के 8 भंग होते हैं। जो ओम है वो विशिष्ट नहीं है, जो ओम है वो नोम नोम विशिष्ट नहीं है, इस तरह से उसको नहीं लिया यहां पर। अब 13 नंबर का सूत्र, विशिष्ट ज्ञानावरणी वेदना। विशिष्ट यानी वो वृद्धि वाली, देखो ये ओम और विशिष्ट जो है वो दोनों उत्कृष्ट और जघन्य पर नहीं लगते, बीच वालों में लगाया। तो कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित अजघन्य, नहीं उन्होंने चारों नहीं लगाए, बीच में ही है। वृद्धि हानि वाले वो बीच के छोड़ लिए उन्होंने। नहीं विशिष्ट देख रहे, देख कथनचित कथनचित वो थ बराबर देखना, कहीं कहीं बिंदी नहीं होगी तो लगाना हो। देखो कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी, कथनचित अनादि, कथनचित ध्रुव, कथनचित अध्रुव, कथनचित ओज, कथनचित युग्म, इस पर भी 8 भंग होते हैं। इस प्रकार विशिष्ट पद के 8 भंग होते हैं, यानी जघन्य उत्कृष्ट छोड़ा और ओम और नोम नो विशिष्ट छोड़ा। यह 13वें सूत्र का अर्थ। अब 14वें, नोम नो विशिष्ट, वो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, इस पर चारों लगेंगे, और कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी, कथनचित अनादि, कथनचित ध्रुव, कथनचित अध्रुव। अभी नोम नो विशिष्ट लगाए इसलिए ओम और विशिष्ट को नहीं लेना है। कथनचित ओज और कथनचित युग्म है। इस प्रकार उसके 10 भंग होते हैं, वो भग दिखता है, भंग होते हैं। यह 14वें सूत्र का अर्थ है। इन भंगों के अंकों का विन्यास यह है, हम पहले से उसको देखेंगे, चेक करेंगे, है ना। पहले सूत्र से देखो, ये 79 पृष्ठ पर हमने पहला सूत्र देखा था, तो पहले सूत्र में तो 13 भंग सभी है करके हमने देखा था, ये 13 है। दूसरे सूत्र में 5 देखे थे, 80 पृष्ठ पर 5 है। अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणी वेदना में 11 देखे थे। चतुर्थ सूत्र में फिर 5 देखे थे। पांचवें सूत्र अजघन्य वाले में 11 थे, सादी में 10 थे, अनादि में 12 देखे थे, और ध्रुव में भी 12 देखे थे। 12 12 दो बार है ना यहाँ पर। फिर अध्रुव में 10 और ओज में 10, बारह बारह के पास दस दस, फिर युग्म के दस, ओम के आठ, विशिष्ट के आठ और नौम नौ विशिष्ट के दस, इसकी टोटल 135 बराबर है। आठ आठ सोलह चार बीस इक्कीस सन सात अट्ठावीस यानी आठ छत्तीस चाहिए कितना है, आठ नठ सोलह सोलह चार बीस इक्कीस इक्कीस सन सह सत्तावीस यानी आठ पस्तीस तीन एक सौ पैंतीस बराबर है। अब आगे देखते एवं सत्तन्नम कम्माणम, ये जो हमने सूत्र इतने देखे थे सारे हैं ऐसे ही ज्ञानावरण पर हमने देखे थे तो ऐसे ही सातों कर्मों पर हो गए। इसी प्रकार शेष सात कर्मों के उत्कृष्ट आदि पदों की प्ररूपणा करनी चाहिए। हाँ उसमें उत्कृष्ट पद है कि नहीं या ऐसी है, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट 33 सागर हो गए और जघन्य आयु अंतिम निषेक जो बाकी है उसको जघन्य कहेंगे। जघन्य आयु कब कहेंगे फिर, कब कहेंगे अपन मरण के एक समय में दूसरी आयु होगी ना वहां पर विद्यमान अयोगी के अंतिम समय में एक समय होगी ना। देखो जिस प्रकार ज्ञानावरण की पद मीमांसा की गई, अभी हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट पद देखे ना, वैसे ही पद अन्य कर्मों में भी हो गए, हर एक में अपने अपने, सबका उत्कृष्ट पद एक जैसा नहीं है। ज्ञानावरणी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा तो नाम गोत्र का 20 का होगा, उसकी बात नहीं, पर उसमें उत्कृष्ट है कि नहीं है इतनी बात है, उसमें उत्कृष्ट नाम का पद है। उसी प्रकार शेष सात कर्मों की पद मीमांसा करना चाहिए। उम्मीद दिख नहीं रहा बराबर, हाँ क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ओजानुयोग द्वार गर्भित पद मीमांसा नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अब स्वामित्व की बात करेंगे। हमने देखा था ना तीन है इसमें अनुयोग द्वार, तीन है, तीन चैप्टर्स, तीन अधिकार हो गए, एक पद मीमांसा वाला हो गया, अब स्वामित्व और फिर अल्प बहुत्व। सामित्तम दुविहम जहन्न पदे उक्कस्य पदे, तो स्वामित्व किसका करना, ये पद पहले बताए तो उसमें स्वामित्व बताएंगे, तो जघन्य पद के स्वामी कहेंगे, उत्कृष्ट पद के स्वामी कहेंगे। तो स्वामित्व दो प्रकार है, जघन्य पद में और उत्कृष्ट पद में। उसमें से जघन्य पद चार प्रकार का है, अब इस पर ये निक्षेप घटाएंगे। नाम स्थापना द्रव्य भाव, नाम जघन्य, स्थापना जघन्य कौमा देना, द्रव्य जघन्य और भाव जघन्य। इनमें नाम जघन्य और स्थापना जघन्य सुगम है। जघन्य ऐसा नाम लग दिया, हम नहीं रखते नाम जघन्य किसी का, छोटू नहीं कहते किसको, हा? कहते कि नहीं बच्चों को, हा? छोटे कहते हैं, छोटू कहते हैं, और उसके बदले जघन्य नाम अच्छा है तो ये नाम जघन्य हुआ। स्थापना जघन्य, ये जघन्य ऐसा किसी में स्थापना कर दी तो हम ये स्थापना जघन्य हुआ, वो सुगम है। अभी जो द्रव्य निक्षेप वाला जो है, तो द्रव्य जघन्य दो प्रकार है, जैसे हमने क्षेत्र में भी घटाया था, क्षेत्र में भी जघन्य उत्कृष्ट पर ये लगाया था सब है? तो कहते द्रव्य जघन्य दो प्रकार है, आगम द्रव्य जघन्य और नो आगम द्रव्य जघन्य। उनमें अभी आगम द्रव्य जघन्य किसको कहना, जघन्य प्रावृत का जानना, जानकार, जघन्य के बारे में जो अपने शास्त्र है आगम है उसको जानने वाला जीव, परंतु उसका उपयोग उसमें नहीं है। तो ये क्या लिखा, जघन्य प्रावृत का जानकार उपयोग रहित जीव, उस जीव को आगम द्रव्य जघन्य कहा। यानी जघन्य संबंधी जो ज्ञान है उसी को वो आगम से द्रव्य जघन्य कह दिया, उस जीव को। अभी हम जघन्य के बदले दूसरा कुछ वहां रखते, भूगोल की बात करेंगे, जैन भूगोल की बात करेंगे, दूसरों के क्यों गे? तो भूगोल प्रावृत को जो जानने वाला है उस जीव को हम द्रव्य निक्षेप से भूगोल कहेंगे। यह बात यहां बता रहे हैं, आगम द्रव्य भूगोल, आगम द्रव्य भूगोल, वो निक्षेप हुआ ना उसमें, जीव में किया। तो यहाँ जघन्य प्रावृत को जानने वाले उसमें उपयोग रहित जीव को आगम द्रव्य जघन्य कहा। और नो आगम द्रव्य जघन्य, जैसे हमने कल देखे थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, उसके तीन प्रकार है। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य जघन्य, ये उसका पूरा नाम। भावी नो आगम द्रव्य जघन्य और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जघन्य, इनमें ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य जघन्य विदित है। विदित यानी वेल नोन है, हमें पता है। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जघन्य दो प्रकार है, ओघ जघन्य और आदेश जघन्य। उनमें अभी ओघ पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाएंगे और आदेश पर भी लगाएंगे। क्षेत्र में भी ये बात आई थी, है ना? अभी यहाँ काल पर घटा रहे, आएगी बात ये। उनमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से ओघ जघन्य चार प्रकार का है। इनमें से एक परमाणु को द्रव्य जघन्य कहा जाता है, यही एक बात थी, यही पहले आई थी। तो यह जघन्य में जघन्य कौन है? द्रव्य, द्रव्य यानी संख्या, या द्रव्यों की अपेक्षा जघन्य कौन है? तो परमाणु। एक आकाश प्रदेश क्षेत्र जघन्य, क्षेत्रों में जघन्य कौन है? तो एक आकाश का प्रदेश। काल में जघन्य कौन है? तो काल जघन्य एक समय है। और परमाणु में रहने वाला एक स्निग्धत्व गुण भाव जघन्य है। आदेश जघन्य भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें देखो, ओघ जघन्य यानी जो सचमुच सबसे छोटा है, और आदेश जघन्य में अपेक्षाकृत छोटा है। नहीं समझे? परमाणु तो सबसे छोटा है, परंतु हमने दो चीजें यहां रखी तो उस ये काल की बात नहीं है, ओघ से काल की अभी बात नहीं आई है, ये जघन्य की बात आई है। काल की बात अभी आएगी आगे, ये जघन्य पद पर घटा रहे, काल पर नहीं। नाम काल स्थापना काल की बात नहीं चल रही है, नाम जघन्य, स्थापना जघन्य, द्रव्य जघन्य और क्षेत्र, ये यही का यही पैराग्राफ हमने क्षेत्र विधान में भी पहले पढ़ा था, ऐसा ही था वहां। जघन्य पद पर और उत्कृष्ट पद पर उन्होंने घटाया था। अब ओघ की अपेक्षा ने जो सचमुच छोटे में छोटा है उसको वहां ओघ से जघन्य कहा। एक परमाणु, एक आकाश का प्रदेश, एक काल का समय वगैरह वगैरह। अब यहां आदेश में क्या कहते हैं? अपेक्षाकृत छोटा बड़ा। हमारे बच्चों में हम कैसे कहते हैं? आपके पिनांग छोटा है कि रानू छोटी है? हाँ, रानू छोटी है। हाँ, कैसे कहा? दोनों की अपेक्षा, हाँ, सरखामणी करी, है ना, दोनों की तुलना करी। अब रानू से भी अभी उसके घर में उसकी जो कुछ जेठानी की लड़की है छोटी, यामिनी, तो उसमें कौन? नहीं, यामिनी तो उसकी जेठानी है। हाँ, वो छोटी का नाम क्या है? कारी, प्रतीति। अच्छा, प्रतीति, तो उसमें कौन छोटी है? हाँ, और उससे भी एक छोटी। हाँ, तो ये अपेक्षाकृत छोटा बड़ा, उसको आदेश से कहा, समझ में है ना? हाँ, तो आदेश जघन्य में अभी द्रव्यों में जो छोटा बड़ा है उसको कहेंगे, क्षेत्र में, काल में और भाव में। तो आदेश जघन्य भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें द्रव्य से आदेश जघन्य की प्ररूपणा करते हैं। द्रव्य से किसको कहना? वह इस प्रकार है, तीन प्रदेश वाले स्कंद की अपेक्षा दो प्रदेश वाला स्कंद आदेश द्रव्य जघन्य है, उसमें वहां तो तीन प्रदेश वाला स्कंद है और ये दो प्रदेश वाला स्कंद है। इसी प्रकार अब वही तीन वाले को चार या पांच वाले की अपेक्षा हम उसको जघन्य कह देंगे, तो ये बदलते रहेगा अपेक्षाकृत। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिए। अब क्षेत्र में बताएंगे, तीन प्रदेशों में अवगाहन करने वाले द्रव्य की अपेक्षा, वहां तो परमाणु की संख्या देखी थी द्रव्यों में, अब यहां वो कितना क्षेत्र व्याप्ता है। जैसे क्षेत्र में कहेंगे आपका घर कितना चौरस फुट है और हमारा कितना है, तो हमारा छोटा है, वो क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य। तो यही बात कहते हैं, तीन प्रदेश व्यापने वाला स्कंद उस द्रव्य की अपेक्षा दो प्रदेशों में अवगाहन करने वाला द्रव्य क्षेत्र से आदेश जघन्य है। ये द्रव्य क्षेत्र से नहीं, द्रव्य ये द्रव्यों की बात है, वो क्षेत्र से आदेश जघन्य है। इसी प्रकार शेष शश हुआ, शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिए। कल हमने अवगाहना के इतने सारे भेद देखे थे ना, तो उसमें हम देखते ये जो वायु का एक है उससे असंख्यात गुना वो तेज का एक वाला हो गया, तो वायु का एक को जघन्य कहेंगे आदेश की अपेक्षा, और वो तेज का एक की अपेक्षा उसको कहेंगे उसकी अवगाहना जघन्य है। इस तरह अभी काल की बात करेंगे, तीन समयों में परिणत द्रव्य की अपेक्षा दो समयों में परिणत द्रव्य आदेश से काल जघन्य है। ध दिख रहा है वो घ करना, जैसे अभी हमने जो छोटी बड़ी बात देखी थी कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उसमें हम बच्चों में जो छोटा बड़ा करते हैं तो काल की अपेक्षा ना कितने समय में वो बढ़ गए हैं, अभी तो एक तो 5 साल से और एक तो 3 साल से है, तो हम वो 3 साल वाले को छोटा कहते हैं। वैसे तीन समय परिणत वाला और दो समय परिणत वाला, उसमें दो समय परिणत वाला छोटा है। अब भाव की अपेक्षा देखो, इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिए। भाव में क्या कहते हैं, तीन गुणों में परिणत द्रव्य की अपेक्षा दो गुणों में परिणत द्रव्य भाव से आदेश जघन्य है। हम कहते ना उस पर जो स्पर्श गुण की स्निग्धत्व और रुक्षत्व, उसमें हम गुण कहते हैं, गुण यानी वो पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेद है, पर्याय में जो प्रकट शक्ति है उसकी बात है। हमने इसमें एक गुण है, इसमें दो गुण है, इसमें तीन गुण है, ऐसा कहते हैं हम, दो गुण वाला चार गुण वाले के साथ बंद होता है। तो वहां जो गुण कहा है वो जो छोटा बड़ा जो हम कैसे कहते हैं दो गुण वाला, उसको हम भाव से जघन्य कहेंगे। चार गुण वाले को भाव से, वो तो उत्कृष्ट में बात आएगी, अभी उसकी हम अब जघन्य की बात कर रहे हैं क्योंकि अपना प्रकरण जघन्य संबंधी चल रहा है। अब ये द्रव्य निक्षेप पूरा हुआ, अब भाव जघन्य दो प्रकार है, आगम भाव जघन्य और नो आगम भाव जघन्य। उसमें जघन्य प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव, पहले उपयोग रहित जीव लिया था, अब उपयोग वाला लिया, उसको कहेंगे आगम भाव जघन्य। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक का जो सबसे जघन्य ज्ञान है, अभी यहां अवगाहना की बात नहीं कर रहे, ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे, तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक का जो सबसे जघन्य ज्ञान है वह नो आगम भाव जघन्य है। यहां ओघ जघन्य काल प्रकृत है, अभी इसमें कौन सी बात करेंगे, ओघ जघन्य काल। ओघ जघन्य काल कौन सा होगा देख के बताना, कितना है बोलो, एक समय है ना। हमने ओघ जघन्य में क्या क्या देखा था, द्रव्य में एक परमाणु, क्षेत्र में आकाश का एक प्रदेश, काल में एक समय, है ना, तो ये ओघजगन्य हुआ। तो जब यहाँ ज्ञानावरण की या कोई किसी भी द्रव्य की, जो हम कहेंगे ना वेदना काल की अपेक्षा जघन्य है, तो उसको समझना एक समय अभी उसका एक निषेक बाकी है, बस उसकी स्थिति एक समय वाली है। जब एक जघन्य से कहेंगे ये अपना काल का जो विधान चलेगा इसमें, और जब कहेंगे वेदना जघन्य है, समझना एक समय वाला अभी वहाँ कर्म रह गया है, उसको हम एक निषेक कहते हैं। देखो ओग जघन्य प्रकृति है, क्योंकि यहाँ सर्वजघन्य स्थिति का अधिकार है। सर्वजघन्य सबसे छोटी स्थिति कितनी है, तो एक समय वाले। अब ये जो जघन्य पर घटाया ऐसा ही उत्कृष्ट पर घटाएंगे। नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से उत्कृष्ट चार प्रकार का है, उनमें नाम उत्कृष्ट और स्थापना उत्कृष्ट सुगम है। वो उत्कृष्ट नाम भी रख देते हैं तो वो नाम उत्कृष्ट हुआ। अब ये द्रव्य निक्षेप लगाएंगे उत्कृष्ट शब्द पर। द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार है, आगम द्रव्य उत्कृष्ट और नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट। जैसे हमने जघन्य पर लिया था वैसे यहाँ पर उत्कृष्ट पर। उनमें उत्कृष्ट प्रावृत का जानकार उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य उत्कृष्ट है, और नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट तीन प्रकार है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट। उसमें ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट सुगम है। ज्ञायक के शरीर को ज्ञायक कहेंगे और वो जीव आगे भविष्य में जानने वाले को भावी कहेंगे। जीव और उसका शरीर छोड़कर इनके अलावा जो कुछ है उत्कृष्ट में उसको भी नो आगम तद व्यतिरिक्त कहेंगे। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार का है, ओघ हुआ है उसको ओघ करना। जैसे हमने ओघ जघन्य देखा था ना, वैसे ओघ उत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट। उसमें ओघ उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार है। वहां हमने ओघ जघन्य में सबसे छोटा द्रव्य परमाणु देखा था, अब यहाँ ओघ उत्कृष्ट में कौन सा देखना पड़ेगा, बड़ा द्रव्य कौन सा है, द्रव्यों की अपेक्षा लेना है, स्कंद बड़ा से बड़ा स्कंद लेना। देखो उनमें द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट महास्कंद है, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट सर्वकाल है, हाँ अनादि अनंत लेना, यह असंख्यात कालानु को नहीं लेना, वो तो द्रव्य में आ जाएंगे है? भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वर्ण गंध रस और स्पर्श से युक्त द्रव्य है। अब आदेश श दो बार हुआ है, आदेश श हुआ है, आदेश उत्कृष्ट। अब ओग पर घटाए ना, आदेश यानी फिर तुलनात्मक समझना, इससे ये उत्कृष्ट ऐसा समझ सकते हैं। आदेश उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार है, उनमें एक परमाणु की अपेक्षा दो प्रदेश वाला स्कंद द्रव्य की अपेक्षा आदेश उत्कृष्ट है, दो प्रदेश वाले स्कंद की अपेक्षा तीन प्रदेश वाला स्कंद भी द्रव्य से आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों के विषय में ले जाना चाहिए। अब क्षेत्र की बात करेंगे, एक प्रदेश रूप क्षेत्र की अपेक्षा दो क्षेत्र प्रदेश क्षेत्र से आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष क्षेत्र प्रदेशों में भी ले जाना चाहिए। क्षेत्र छोटा बड़ा उसकी अपेक्षा वो बड़े को हम आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। अब एक समय की अपेक्षा दो समय परिणत द्रव्य काल से आदेश उत्कृष्ट है, इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिए। एक गुणयुक्त द्रव्य की अपेक्षा दो गुणयुक्त द्रव्य भाव से आदेश उत्कृष्ट है। परिणमन निरंतर चलता है, परंतु हम किसी विशिष्ट समय से हम देखेंगे उसको। अभी हमने देखा था ना, ये बच्चा अभी 5 साल का है और ये 3 साल का, ये कैसे कहते हम, उस अपेक्षा से लेना। या हमने ये भी देखा था कि जो पंचलब्धि के प्रकरण में हम देखते हैं, ये अधकरण मानकर जिसको दो समय हुए हैं, किसी को तीन समय हुए हैं, किसी को पांच समय हुए हैं, और उनका परिणाम एक समान हो सकता है, ये जो बात हम कहते हैं वो दो समय परिणत, यानी किसी विशिष्ट अपेक्षा में वो उस समय परिणत। अब जब हम कहते हैं अभी मेडिकल में आके इसको तीन साल हुए और इसको एक साल हुआ है, तो वहां मेडिकल की अपेक्षा लगाई और उसमें कितने साल से परिणत है ऐसा लिया, वैसे लेना। वो आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिए। एक गुण युक्त द्रव्य की अपेक्षा दो गुण युक्त द्रव्य भाव से आदेश उत्कृष्ट है, यानी वो उसके गुण की अपेक्षा दो गुण वाला तीन गुण वाला है ना, तो जो उससे कम वाले से वो उत्कृष्ट है ऐसा कहेंगे। इसी प्रकार शेष गुणों में भी ले जाना चाहिए। ये द्रव्य निक्षेप लगाए, अभी भाव निक्षेप से कहेंगे। भाव उत्कृष्ट, आगम भाव उत्कृष्ट और नो आगम भाव उत्कृष्ट के भेद से दो प्रकार हैं। उनमें उत्कृष्ट प्रावृत्त का जानकार उपयोग युक्त जीव आगम भाव उत्कृष्ट है और नो आगम भाव उत्कृष्ट केवल ज्ञान है। भावों में सबसे उत्कृष्ट लिया, यहां ओग उत्कृष्ट काल का अधिकार है। वहां हमने देखा था ओग जगन्य का अधिकार है ना, यहां काल की अपेक्षा ओग उत्कृष्ट सब काल कहा गया है, उसका यहां ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या कहा, ओग उत्कृष्ट में क्या देखा था सब काल ने अनादि अनंत काल, वो यहां नहीं लेना है। तो यहां उत्कृष्ट में क्या लेना, अपने अपने कर्म का उत्कृष्ट काल लेना। देखो, क्योंकि कर्म स्थिति में उसकी संभावना नहीं है, कर्म स्थिति में जो उत्कृष्ट है वो लेना। है तो ओग उत्कृष्ट काल, परंतु ओग उत्कृष्ट में वो कर्म स्थिति वाला उत्कृष्ट लेना, ये पूरा अनादि अनंत काल इसमें नहीं लेना है। हाँ, अब कहते एक स्वामित्व जघन्य पद में और दूसरा एक उत्कृष्ट पद में, इस प्रकार स्वामित्व दो प्रकार ही है। यहाँ कर्मों की वेरिएशंस बहुत है, एक एक समय से डिफर करते हुए, परंतु यहाँ दो ही स्वामी बताएंगे। एक जघन्य में जघन्य, एक समय किसका काल रह गया उसकी बात करेंगे, और अधिक से अधिक जो उत्कृष्ट स्थिति अपने अपने कर्मों की है उसकी बात करेंगे, उसके स्वामी कौन जीव है उसकी बात करेंगे। क्योंकि इनके अतिरिक्त और दूसरे स्वामित्व की संभावना नहीं है। अब ये स्वामित्व उत्कृष्ट या जघन्य किसको होता है उसको कहेंगे, पहले उत्कृष्ट को बताएंगे। सामित्ते न उक्कस्य पदे नानावर्णीय वेयना कालदो उक्कस्या कस्य, सूत्र में तो पहले किसको होती है पूछा है, फिर अगले सूत्र में वो बताएंगे किसको होती है। स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में ज्ञानावर्णीय वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है, हमने क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट देखा था वो महामत्स्य, फिर उसको कहाँ समुद्घात करता है, अब काल की बात चल रही है, जिसको लंबे में लंबे काल वहां कर्म बंधा है उसकी बात करेंगे। सूत्र में उत्कृष्ट पद का निर्देश जघन्य पद के प्रतिषेध के लिए कहा गया है, यानी यहाँ उत्कृष्ट की बात है जघन्य की नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट यह पद यह शब्द इस सूत्र में डाला है निर्देश यानी कथन। ज्ञानावरण पद का निर्देश शेष कर्मों के प्रतिषेध के लिए है, यानी यहाँ ज्ञानावरण की पहले बात बताएंगे, अब अन्य कर्मों की नहीं। काल का निर्देश, ये दोनों जगह निर्देश हुआ है, दे के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए। काल का निर्देश क्षेत्र आदि का प्रतिषेध करने वाला है, यानी यहाँ काल की बात होगी, क्षेत्र किसका बड़ा है छोटा है उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। किसके होती है, इससे वह क्या देव की होती है, क्या नारकी के होती है, क्या मनुष्य के होती है और क्या तिर्यंज के होती है, इस प्रकार पृच्छा की गई है। वो ज्ञानावरणीय वेदना यानी कर्म, ज्ञानावरणी का कर्म काल की अपेक्षा अधिक से अधिक किसके है, यानी कितनी स्थिति लंबी में लंबी किसने बांधी है, ये पूछ रहे हैं। अब कहते हैं, अब इसके लिए ऐसा जीव ले लेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशन है वो सब डालेंगे। अन्नदरस्य पंचिंद्रियस्य सन्निस्य मिच्छा इट्ठिस्य, पहले में पहले कौन लिया, संगी पंचेंद्रिय और वो भी मिथ्या दृष्टि, क्यों सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं लिया, वो अंत कोड़ा कोड़ी होता है सम्यक तो के पहले से ही, स्थिति पहले बंदी हुई भी घट जाती है और नया बंद भी अंत कोड़ा कोड़ी का ही होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि को लिया यहाँ पर। अब कहते अन्नदरस्य पंचेंद्रियस्य सन्निस्य मिच्छा इट्ठिस्य सव्वा ही पज्जति ही पज्जत्तयदस्य। अब जब हिंदी में पढ़ेंगे ना आपका और ख्याल आएंगे, यानी सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा अर्थ है इसका। कम्म भूमियस्य अकम्म भूमियस्य वा कम्म भूमि परिभागस्य वा संखेज्य वासा उवस्य वा असंखेज्य वासा उवस्य वा और देवस्य में गैप चाहिए, वा देवस्य हुआ है, वा शब्द अलग है। देवस्य वा मनुष्यस्य वा तिरिखस्य वा नैरयस्य वा इत्थिवेदस्य वा पुरिषवेदस्य वा नौंसयवेदस्य वा जलचरस्य वा थलचरस्य वा बाहुआ है, खगचरस्य वा सागार जागार जुदोव जोग युत्तस्य उक्कस्याय ठिदिये उक्कस्य ठिदि संकिले से वट्टमानस्य अधवा इसी मध्यम परिणामस्य तस्य नानावर्णीय वेयना कालदो उक्कसा। अब इसका अर्थ हिंदी में पढ़ेंगे। अन्यतर पंचेंद्रिय जीव के, अब इसमें जो एक एक शब्द आया है उसके स्पष्टीकरण बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। अन्यतर किसको कहना वो बात है, अन्यतर यानी कोई एक। अन्यतर पंचेंद्रिय जीव के अभी वो कैसा होना चाहिए, जो संगी है मिथ्या दृष्टि है सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है। कर्मभूमिज अकर्मभूमिज अथवा कर्मभूमि प्रतिभागोत्पन्न है। कर्मभूमि प्रतिभाग किसको कहते हैं, वो स्वयं प्रभ पर्वत के बाहर की ओर आधा द्वीप और स्वयं ब्रह्मण समुद्र, वो कर्मभूमि जैसी है ना वहां परिस्थिति, तो कर्मभूमि प्रतिभाग कहते हैं, वहां का उत्पन्न है। अब कहते संख्यात वर्षायुष्क अथवा असंख्यात वर्षायुष्क है, देव मनुष्य तिर्यंच अथवा नारकी है, स्त्रीवेद पुरुषवेद अथवा अनुपुसक वेद में किसी भी वेद से संयुक्त है, यानी कोई भी वेद वाला हो ये अधिक से अधिक ज्ञानावरणी बांध सकता है, जलचर अथवा नभचर है। अरे ऊपर तो तीनों लिए ना, जलचर सवा थलचर सवा खगचर सवा, ये थलचर डाल दो भाई, जलचर उसके बाद थलचर अथवा नभचर है, ये थलचर किसको कहते मालूम है, हाँ बेन, हाँ जमीन पर विचरण करने वाले, और नभ में जो पंछी है उसको नभचर कहते हैं। नभ को ख या खे भी कहते हैं, ख ख ग कहते ना, हाँ ऐसे खचर किसको कहते हैं या खेचर, खे यानी आकाश, खेचर वो खेचर गधे जैसा, गधे और घोड़े का वो खेचर नहीं, देवों को भी कहते खेचर आकाश में चाहते क्योंकि हमने तो खेचर नाम का एक प्राणी देखा है। देखो साकार उपयोग वाला है, सागार लिखा ना, और जागार यानी जागृत है,
इतना लंबा
हाँ नींद में नहीं तो सो जाओ अच्छी तरह से। लंबा बंद जो है वो जागृत अवस्था में करता है, इसे कहते हैं। श्रुतोपयोग से युक्त है, यानी मति ज्ञान वाला नहीं लिया, श्रुत ज्ञान वाला लिया है। हाँ श्रुतोपयोग में, क्योंकि हम देखते हैं ना ये शेख चिल्ली करते हैं हम, डायरेक्ट मति ज्ञान में जो कुछ सुनना सुनने का है या कुछ उससे इतना नहीं हो गया। श्रुतोपयोग में क्या है, ये मन के द्वारा हम उसमें कुछ ना कुछ विचारों में ना वो बंद अधिक करते हैं। अब देखते आगे। हाँ उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य उत्कृष्ट स्थिति संकलेश में वर्तमान है, यानी वो अधिक से अधिक संकलेश परिणाम वाला है। क्योंकि हमने देखा था कर्मों का बंध चार प्रकार से होता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति और प्रदेश तो योग के कारण बनते, जितना योग ज्यादा उतने प्रदेश ज्यादा और वैसी वैसी टाइप की प्रकृति बंधेगी। अब स्थिति और अनुभव काहे से बनता है, तो कषाय से, तो अधिक संकलेश तो अधिक लंबी स्थिति बंधेगी, संकलेश कम है तो स्थिति छोटी बंधेगी। तो यहां क्या कहते हैं, उत्कृष्ट संकलेश में वर्तमान उत्कृष्ट स्थिति संकलेश में वर्तमान है अथवा कुछ मध्यम संकलेश परिणाम से युक्त है, वैसा लिखा है। हाँ हाँ उसके ज्ञानावरणीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। ये ज्ञानावरणी की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट कौन से जीव की होती है, उसके लिए इतने कंडीशंस बताएं। हाँ तो अभी देखेंगे ना, हम पढ़ेंगे तभी उसका एक एक शब्द का हमें ख्याल आएगा ऐसा क्यों लिखा है। पंचेंद्रिय लिखा संगीत, तो दूसरे एक इंद्रिय वगैरह क्यों नहीं लिखे, तो उनका तो स्थिति जो बनती है वो कम होती है उनके लिए। जैसे एक इंद्रियों में जो हम देखते हैं ना मिथ्यात्व का, दर्शन मोहिनी का अधिक से अधिक बंध कितना हो सकता है, मालूम है ना आपको स्थिति लंबी कितनी बंधेगी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। वो गुजराती वाले सिंतेर क्या कहते, सितेर, हाँ 70। हाँ अभी कोई निगोद वाला जीव होगा एक इंद्रिय वाला, वो अधिक से अधिक स्थिति बांधेगा तो कितनी बांधेगा, एक सागर और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो एक इंद्रियों में लंबी स्थिति नहीं बनती है, तो लंबे में लंबी स्थिति पंचेंद्रियों के बंधेगी। अब ये सूत्र में जो शब्द आए उसका अर्थ बताएंगे। जल्दी कहां से छूटेगा एक इंद्रिय में से, सम्यक तो वहां हो नहीं सकता है। हाँ क्या कहते, हाँ वो अरविंद भाई कहते हैं सत्ता जो पहले सत्ता में बांधी है ना स्थिति, तो वो पूरी हुए बिना एक इंद्रिय में से बाहर नहीं आएगा, और आते ही वो लंबी स्थिति बांधना चालू करेगा। देखो हमने देखा था क्षपित कर्मांशी का गणित में भी वो देखता। हाँ सूत्र में अन्यतर पद का निर्देश अवगाहना आदिकों के प्रतिषेध के अभाव को सूचित करता है। देखो प्रतिषेध का अभाव यानी प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं किसका, यानी यहाँ लिखा है कि कोई एक पंचेंद्रिय, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि बड़ी अवगाहना वाला पंचेंद्रिय या छोटी अवगाहना वाला पंचेंद्रिय, यहाँ अवगाहना का कोई निषेध नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो उसकी बात नहीं है, क्या इसलिए अन्य तरह कहा, यानी कोई एक पंचेंद्रिय, वो संगी पंचेंद्रिय है इतनी ही बात बताइए, वो महामत्स्य है क्या, दूसरा छोटी अवगाहना वाला पंचेंद्रिय है चूहा है उसकी बात नहीं है, वो संकलेश परिणाम वाले तक घटाएंगे बाद में क्या ले? तो प्रतिषेध का अभाव यानी कोई प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं किसी अवगाहना वाले के, अब कहते हैं पंचेंद्रिय, प के ऊपर बिंदी लगाना, पंचेंद्रिय पद का निर्देश विकलेंद्रिय का प्रतिषेध करता है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय नहीं है ये बताता है। इससे यह फलित होता है कि, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट स्थिति को पंचेंद्रिय जीव ही बांधते हैं, विकलेंद्रिय नहीं बांधते। वे पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, संगी और असंगी। उनमें असंगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते। हमने देखा है, अगर मिथ्यात्व की बात करेंगे, ज्ञानावरण की अभी हम यहां नहीं ले रहे क्योंकि हमको गणित बताया ना, तो संगी पंचेंद्रिय में तो 70 कोड़ा कोड़ी होगी और असंगी पंचेंद्रिय अधिक से अधिक बांधेगा तो उसके 1000 है, 1000 सागर की होगी और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना डिफरेंस है उसमें। मन मन वाले हैं ना हम, ये फायदा हुआ। मन तो संगी हुए बिना तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आत्म स्वरूप का उपदेश सुनना, उसको समझना, उस पर विचार करना और निर्णय करना, ये सारा मन मन के निमित्त से हो रहा है। ज्ञान स्वयं कर रहा है परंतु उसका इतना ज्ञान विकसित है ना, मन वाले को ज्यादा ज्ञान विकसित है, तो अधिक ज्ञान का विकास हुआ है तो इस कार्य में लगाए तो सम्यक दर्शन होकर मोक्ष भी हो सकता है, नहीं लगाए तो क्या होगा ये देखो। अभी ये इतनी उत्कृष्ट स्थिति बन देगी तो कहते हाँ। तो असंगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते हैं, इस बात के ज्ञापनार्थ संगी पद का निर्देश किया है। वे संगी पंचेंद्रिय गुणस्थानों के भेद से 14 प्रकार है। संगी पंचेंद्रियों में 14 ही गुणस्थान पाए जाते हैं, मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक। अभी वो तो सबको याद है ना, कि देखना पड़ेगा, याद है बोलो। हाँ, मिथ्यात्व सासाधन सम्यक मिथ्यात्व, हाँ बरोबर है। चौथे का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व, हाँ देश विरत, हाँ प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अपूर्वकरण हाँ, अनिवृत्तिकरण हाँ, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली, ये 14 गुणस्थान है। तो संगी पंचेंद्रियों में तो 14 गुणस्थान है, तो ये उत्कृष्ट वाला किस में लेना? हाँ, इसे वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान बताया ना उन्होंने, देखो उसमें सासाधन सम्यक दृष्टि आदिक, आदिक यानी दूसरे से आदि ऊपर सभी, उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते हैं। सासाधन वाला भी नहीं बांधेगा अभी इतनी उत्कृष्ट स्थिति वाला। इस बात के ज्ञापनार्थ मिथ्या दृष्टि पद का निर्देश किया है। अब कहते हैं मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के हैं। देखो एक एक बात आगे आगे की घटित की है। मिथ्या दृष्टि भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से दो प्रकार है। उनमें अपर्याप्तक उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते हैं, इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा कहा है। ख्याल है ना? हाँ। पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, अब वो भी जो है पंचेंद्रिय भी है, पर्याप्त भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, वो कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज इस तरह दो प्रकार के हैं। उनमें अकर्म भूमिज उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते, किंतु 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थिति को बांधते हैं। अब ये 15 कर्म भूमियां कौन सी है? हाँ अरविंद भाई, पांच भरत क्षेत्र, पांच ऐरावत और पांच विदेह। अभी वो विदेह में बहुत सारे हैं, पांच मेरु संबंधी विदेह अगर हम ले लेंगे उसको सबको मिलकर पांच विदेह कह दिया, परंतु वो एक एक मेरु संबंधी हमने देखा था 32 32 विदेह है। परंतु उसको 15 कर्म भूमिया कहा, 5 विधेय कह दिया। ये जीव ही उत्कृष्ट स्थिति को मानते हैं। इस बात के ज्ञापनार्थ कर्मभूमि जो पद का निर्देश किया है, निर्देश में बिंदी दिख रही है, हाँ आगे, भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के समान देवनारकियों के तथा स्वयं प्रभ पर्वत के बाह्य भाग से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक इस कर्मभूमि प्रतिभाग में उत्पन्न हुए तिरियंचों के भी उत्कृष्ट स्थिति के बंध का प्रतिषेध प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए, यानी प्रतिषेध का निराकरण करने के लिए अकर्मभूमिज के अथवा कर्मभूमि प्रतिभागोत्पन्न जीव के ऐसा कहना है। यानी उसको भी हो सकता है, हाँ, अकर्मभूमि जने कर्मभूमि प्रतिभागोत्पन्न, अकर्मभूमि जो पद से देव नारकियों का ग्रहण करना चाहिए, एक ही बात नहीं है। देखो कर्मभूमि में 15 कर्म भूमि वाली और किसको हो सकता है, तो उसकी भी बात कर रहे हैं। अकर्म भूमिज यानी उसमें देव और नारकियों को लेना, लिखा ना, अकर्म भूमिज पद से देव नारकियों का ग्रहण करना चाहिए। अब कर्म भूमि प्रतिभाग भी लिखा है, वाह वाह लिख के, तो कर्म भूमि प्रतिभाग का अर्थ क्या है? स्वयं प्रभ पर्वत के बाह्य भाग में उत्पन्न जीवों का ग्रहण किया गया है, हमने पहले देखा था ना, इसको कर्मभूमि प्रतिभाग कहते हैं। देखो कौन कौन से जीव लेना, 15 कर्मभूमि वाले भी लेना, अकर्मभूमिज में देवनारकियों को भी लेना, और स्वयं प्रभ पर्वत के बाहर की ओर जिसको कर्मभूमि प्रतिभाग कहते हैं उसको भी लेना। यहाँ के जीव ये उत्कृष्ट स्थिति बांध सकते हैं, भोग भूमि को नहीं लिया है, हाँ, वहां के ऐसे संकलेश परिणाम नहीं होते। संख्यात वर्षायुष्क दोनों लिए ना, संख्यात वर्षायुष्क या असंख्यात वर्षायुष्क, संख्यात वर्षायुष्क कहने पर 2.5 द्वीप समुद्रों में उत्पन्न हुए तथा कर्मभूमि प्रतिभाग में उत्पन्न हुए जीव का ग्रहण करना चाहिए, और असंख्यात वर्षायुष्क से देवनारकियों को ग्रहण करना चाहिए। अब देवनारकियों में 10,000 वर्ष वाले भी कोई होगे, फिर भी उसको उसमें ले लेना है। इस पद से ये असंख्यात स के ऊपर बिंदी लगाना, देखो इस पद से एक समय अधिक पूर्व कोटि आदि उपरिम आयु विकल्पों से संयुक्त तिरियंचों व मनुष्यों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व सूत्र से उनका प्रतिषेध किया जा चुका है। कोई कहेंगे पूर्व कोटि के ऊपर एक समय दो समय आदि मनुष्य तिरियंच है, कहां पर हो सकते हैं? बहु भूमि में, तो उसको तो यहां नहीं लेना संख्यात असंख्यात में। क्यों नहीं लेना? क्योंकि कर्म भूमि वाले ऐसे पहले ही बता चुके हैं, इसलिए भोग भूमि वालों की जितनी भी आयु है उसको ये संख्यात असंख्यात में नहीं गिनना। देवनारकी को तो गिन सकते, इनको नहीं गिनना है। हाँ, अब आगे 90 नंबर पर शंका, देव तथा नारकियों में जो संख्यात वर्षायुष्क है उनका फिर असंख्यात वर्ष आयुष्कपना कैसे बनेगा? उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं, जो संख्यात वर्षायुष्क देव है वे असंख्यात वर्षायुष्क नहीं है, परंतु संख्यात वर्षायुष्क ही है। परंतु यहां पर एक समय अधिक आदि पूर्व कोटि को लेकर आगे के आयु विकल्पों को असंख्यात वर्षायु के भीतर स्वीकार किया गया है, यानी वो संख्यात वर्ष आयुष के उसमें देव भी आ गए, उसमें कोई बात नहीं। जो संख्यात वर्षों के होंगे वो संख्यात वर्ष के है, और जो अधिक वाले वो असंख्यात वर्षों में चले जाएंगे। यानी यहाँ भूभूमि वालों को छोड़कर अन्य को ग्रहण करना चाहिए संख्यात असंख्यात में। शंका, एक समय अधिक पूर्व कोटि के संख्यात वर्ष रूपता होते हुए भी असंख्यात वर्ष रूपता कैसे संभव है? क्या कहते हैं, असंख्यात वर्षायुष्क में हम कौन किस किस को लेते हैं? भोगभूमियों को लेते हैं, देवों को भी लेते हैं, परंतु भोगभूमि के ऐसे कोई जीव है पूर्व कोटि से एक समय वाले ज्यादा हो गए? वो तो हमने उत्कृष्ट आयु देखी पल्लियों में जो देखी थी, जगन्य आयु तो इतनी भी हो सकती ना उनकी। तो उसके लिए कहते हैं कि ये जो बताया है वहां पर उसका समाधान करते नहीं, क्योंकि राजवृक्ष के समान, राजवृक्ष किसी एक पेड़ का वृक्ष का नाम है, जैसे हम अशोक वृक्ष कहते हैं, आम वृक्ष कहते हैं, वैसे वो राजवृक्ष। राजवृक्ष के समान असंख्यात वर्ष शब्द रूढ़िवश अपने अर्थ को छोड़कर आयु विशेष में रहने वाला यहाँ ग्रहण किया गया है। ये असंख्यात वर्ष जो शब्द है वो तो रूढ़ी में, असंख्यात वर्ष आयुष कहने देवनार के और भूभूमि वाले, ये रूढ़िवश ऐसा कह देते, परंतु वहां भी संख्यात वर्ष वाले हो सकते हैं। अब कहते हैं, चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के उत्कृष्ट स्थिति के बंध का प्रतिषेध नहीं है। ये जो उत्कृष्ट बंध हमें लगता है कि मनुष्य तिरंचों को ही होता होगा, देवों को तो नहीं होता होगा, ऐसी तो बात नहीं है। चारों गति के मिथ्या दृष्टि हो सकता है उसको, ये मिथ्या तो गुणस्थान वाले को किसी को इतना अधिक से अधिक बंध हो सकता है। इस बात के ज्ञापनार्थ देव के, मनुष्य के, तिरंज के अथवा नारकी के ऐसा कहा है। एक एक शब्द लेकर उसको बताया, देवों को भी होगा, मनुष्यों को भी हो सकता है, तिरंचों को भी, नारकी को भी। अब कौन से वेद वालों को होगा? तो तीनों वेद वालों को हो सकता है। तीनों ही वेदों में उत्कृष्ट स्थिति के बंध का प्रतिषेध नहीं है, यानी बंध हो सकता है। दो बार लिया ना निगेटिव, प्रतिषेध नहीं है यानी हो सकता है, होने में कोई वांदा नहीं। इस बात के ज्ञापनार्थ स्त्री वेदी के, पुरुष वेदी के अथवा नपुसक वेदी के ऐसा कहा है। हम देखते हैं ना, वो नरकायु सातवें नरक में नहीं जाती स्त्री, परंतु यहां किसकी बात चल रही? ज्ञानावरण की उत्कृष्ट बंध वेदना किसके होती, उसकी बात, उसके काल की बात चल रही है। चरण अर्थात गमन विशेष का अभाव बतलाने के लिए जलचर के, थलचर के अथवा नभचर के ऐसा कहा है। यानी जलचरों में ही होता है या थलचरों में होता है ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में भी हो सकता है, इसलिए तीनों का ही नाम लेकर लिखा है। उनमें मत्स्य और कच्छप आदि जीव जलचर, जलचर किसको कहना है? जो जल में रहने वाले वो जलचर। वो जलकायिक की बात नहीं है वो, यहाँ पर जलकायिक तो एक इंद्रिय है, और जलचर यानी जल में रहने वाले मछली जो है, हाँ पंचेंद्रियों की बात चल रही है, कछुए हैं, ये पंचेंद्रिय जीवों की बात चल रही। सिंह वृक और वाघ आदि थलचर, थलचरों में वो सिंह व्याघ्र वगैरह उसको लिया, और नभचरों में गृद्ध, ढेंक और शेन आदि नभचर जीव हैं। गृद्ध पक्षी पंछी यानी समझते ना, गिधाड़ जिसको कहते हैं, हाँ। वल्चर क्या कहते हैं अंग्रेजी, गिद्ध अंग्रेजी में क्या वल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं वल्चर्स। दर्शन उपयोग से सहित जीव उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते। क्या कहा? हाँ शेन, ये पंछी है कोई अलग अलग, यानी कोई ऐसे ढेंक यानी वो बड़े बड़े होंगे, ये कुछ मांसाहारी पंछी होने चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति को संकलेश परिणाम वाले ऐसे होंगे कुछ, जो कुछ है अभी। ये तो उन्होंने किसी भी पंछी का, ये नभचर किसको कहना वही बताना है, तो सभी अभी हम चिड़िया कौवे को भी ले लेंगे तो ये नभचर ही होंगे। हम हम देखते हैं तो ईगल जो है यानी जो गरुड़ पक्षी कोई भी पंछी ले लो ना, हमको नभचर बताने हैं, उसमें किसी विशिष्ट की बात नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, दर्शनोपयोग से सहित जीव उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधते परंतु ज्ञानोपयोग युक्त जीव ही उसे बांधते हैं। ये तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग कितना फटाफट बदलता होगा, परंतु कहते ज्ञानोपयोग में बनता है उत्कृष्ट स्थिति। इस बात के जतलाने के लिए साकार पद का निर्देश किया गया है। साकार ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान को साकार कहते हैं, साकार उपयोग वाला, और दर्शन को क्या कहते हैं, निराकार उपयोग वाला दर्शन। सोया हुआ जीव उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधता परंतु जागरूक जीव ही उसे बांधता है। अभी ये जो मारकाट करने वाले हैं वो तो नींद में तो उतने लोगों के लिए भला है ना, भले सोते रहे, जागरूक होते उदम मचाते, तो कहते जागरूक जीव ही उसे बांधता है। देखो हमने तो पंचलब्धि में तो सम्यक तो भी किसके होता है, वो भी जागृत वाले को होगा, साकार उपयोग वाले को होगा, यानी जागृत और साकार उपयोग में करने जैसा क्या है, ये दोनों ही हो सकता है ना, सम्यक तो भी हो सकेगा और अधिक से अधिक उत्कृष्ट स्थिति को भी बांध सकेगा। तो जागृत पद का ग्रहण किया है, श्रुतोपयोग युक्त जीव ही उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है न कि मति उपयोग युक्त जीव। यानी मति ज्ञान क्या है, पंचेंद्रियों के और मन के द्वारा जो उसका कुछ पदार्थों को जान रहा है उसको मति ज्ञान उपयोग लिया, और ये श्रुत उपयोग में लिया। श्रुत ने एक पदार्थ हमने दिखा, ये लाल दिखा रहे, ये अच्छा नहीं, अमूत वो, उसके जो उसके ऊपर जो कुछ चलता रहता है ना विचार, तो उसमें वैसा लिया इसको। इस बात के ज्ञापनार्थ श्रुतोपयोगी नहीं श्रुतोपयोग युक्त जीव के ऐसा कहा गया है। उपयोग एक टाइम में एक है, ज्ञान तो दोनों है, नहीं समझे, ज्ञान की पर्याय में कहेंगे एक साथ चार ज्ञान होते हैं, परंतु उपयोग एक में ही चलेगा, क्योंकि पूरी ज्ञान की पर्याय अकेले उपयोग रूप नहीं है, लब्धि उपयोग और भावेंद्रियम कहा। उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य संकलेश स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। क्या कहते हैं, उतनी ही उत्कृष्ट स्थिति के बंधने के लिए अलग अलग संकलेश परिणाम हो सकते हैं। अभी संकलेश का एक इतना संकलेश है, ज्यादा संकलेश है, अधिक संकलेश है, उसे ऐसे तीव्र 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 असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग संकलेश स्थान है, और उससे वो टॉप मोस्ट एक स्थिति मैक्सिमम वाली बन सकती है। उनमें से अंतिम संकलेश स्थान के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है, इस बात के ज्ञापनार्थ उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य उत्कृष्ट स्थिति संकलेश में वर्तमान। अभी इसका बंध ये जघन्य स्थिति संकलेश से भी इतना बंध होगा और उत्कृष्ट संकलेश से भी होगा, परंतु यहाँ कौन सा जीव लिया, उत्कृष्ट स्थिति संकलेश से युक्त। संकलेश स्थानों में भी जो अधिक से अधिक उत्कृष्ट स्थान है उसके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव लिया। अब वो कहेंगे ना, देखो इससे भी वो दूसरा बन सकता है, ये पूरी रेंज है, उस रेंज में से किसी भी संकलेश के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। ऐसा नहीं कि इस संकलेश से ये स्थिति बनेगी, थोड़ा संकलेश कम है तो एक समय कम वाली बंदगी, ऐसा नहीं, ये पूरी रेंज से ये उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है, और वो दूसरी एक समय कम वाली स्थिति उसकी भी रेंज कोई अलग होगी। तो ये कौन सा लिया है, उत्कृष्ट वाला तो है ही है परंतु दूसरा भी हो सकता है, अभी उसकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो लो। अश्विन भाई
ब्रह्मोद्यंतारं ब्रह्मसूत्रारं ब्रह्मायज्ञानं ब्रह्मा